हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। विक्रांत अमन सिंह राठौर के बंगले में पहुंचा था। उसे वहां अत्यधिक खामोशी लगी। वो समझ गया कि सभी अपने कमरों में आराम करने चले गए होंगे। लेकिन तभी एक नौकर आया। उसने कहा, मैम, करिश्मा ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आपके लिए गर्मागर्म खाना लगवा दूं। मैम एक जरूरी काम से बाहर गई हैं। विक्रांत रंधावा ने ये सुनकर जहरीली मुस्कुराहट से कहा, अमन और मिस तारा कहाँ हैं? नौकर ने उत्तर दिया, वो दोनों अपने कमरे में हैं। विक्रांत रंधावा ने कहा, ठीक है, तुम जाकर सो जाओ, मैं खाना खुद खा लूँगा। ऐसा कहकर विक्रांत रंधावा अपने कमरे में चला गया। वहां जाकर वो शीघ्र ही काले धुएं में बदल गया। विक्रांत काले धुएं का रूप बनाकर तारा और अमन के कमरे में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने फिर से तारा को देखा। तारा का सिर अमन के कंधे पर था और उसका एक हाथ उसके पेट पर। वे दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए बेखबर सो रहे थे। उन दोनों को करीब से देखकर अमन पर विक्रांत को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि वो अभी अमन की जान ले लेगा। कुछ सोचकर वो आगे बढ़ा। अमन की जान लेने के लिए उसने अपनी जादुई शक्ति से एक चमचमाता खंजर मंगवा लिया। ये कोई आम खंजर नहीं था, ये ऐसा खंजर था जो किसी भी जिन की जान आसानी से ले सकता था। लेकिन विक्रांत ये भूल गया था कि उसके सामने कोई मामूली जिन नहीं था, उसके सामने महाशक्तिशाली जिन महाराज था, जिन्नातों का नया सरदार। उसके पास तिलिस्मी पत्थर भी था। तिलिस्मी पत्थर की शक्ति का विक्रांत को कोई अंदाज़ा नहीं था। इस पत्थर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो विक्रांत का सामना कर सके, लेकिन हाँ, वो उसे काफ़ी हद तक चोट पहुँचा सकता था। जैसे ही विक्रांत अपना चमचमाता खंजर लेकर अमन की ओर बढ़ा, ठीक उसी वक्त तारा के पेट से कुछ रोशनी निकलने लगी। वो खंजर उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। रोशनी के लपटे विक्रांत के खंजर वाले हाथ पर पड़ी थीं। विक्रांत उस ताप को सहन नहीं कर पाया। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। वो समझ गया कि तारा के पेट में जो बच्चा है, उसी ने अपने पिता अमन की जान बचाई है। विक्रांत सोचने लगा कि इस बच्चे का जल्द मरना बहुत जरूरी है। वो तारा को जहर खिलाकर या धक्का देकर नहीं मार सकता था। ये कोई आम बच्चा नहीं था। उसकी जान सिर्फ तारा के साथ किसी शक्तिशाली राक्षस के साथ शारीरिक संबंध बनने के बाद ही जा सकती थी, वरना उसकी जान किसी भी कीमत पर नहीं जा सकती थी। उस राक्षस के अंश को इस बात का पूरा अंदाजा था। खंजर नीचे गिरकर गायब हो गया था। इसका मतलब था कि अगले 3 दिनों तक वो खंजर उसकी शक्तियों द्वारा उसके पास नहीं आने वाला था। ये कोई आम खंजर नहीं था, ये वही खंजर था जिससे उसने पिछले जन्म में अपनी जान ली थी। वो खंजर उसकी जान लेने के बाद इतना शक्तिशाली बन चुका था कि वो किसी भी जिन को मार सकता था। हालांकि इस खंजर से अमन की जान नहीं जाती, लेकिन वो इतना घायल हो सकता था जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। फिलहाल उसके बच्चे ने उनकी जान बचा ली थी। विक्रांत रंधावा तारा पर एक नज़र डालकर उनके कमरे से धुआं बनकर गायब हो गया। उसके जाते ही तारा की आंख खुली। उसे एहसास हुआ कि कोई कमरे में था, क्योंकि उसे एक अजीब सी गंध आ रही थी। ये गंध उस राक्षस के अंश की थी, लेकिन तारा उसे पहचान नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि ये किसी और चीज की गंध है, लेकिन वो इस गंध को अच्छी तरह जानती थी। परीलोक में वो हर रात इस गंध को महसूस करती थी जब राक्षस उसके पास आकर उसके शरीर को नोचता था। रात के दूसरे पहर तारा की आंख खुली और उसका सोने का मन नहीं कर रहा था। उसने सोचा कि थोड़ी सैर कर ली जाए। उसे अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की इजाज़त मिल चुकी थी। तारा ने धीरे से अमन का हाथ हटाया और बेड से उठी। बाहर आकर उसने चारों ओर देखा। चारों ओर अजीब सी खामोशी और शांति थी। तारा का दिल आकाश में उड़ने को कर रहा था। चांद खिल गया था, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था, और टिमटिमाते तारे आसमान को और भी खूबसूरत बना रहे थे। तारा का दिल कर रहा था कि वो उड़कर आसमान की सैर करे, क्योंकि बहुत दिनों से उसने आसमान की सैर नहीं की थी। विक्रांत रंधावा एक बार हमला करने के बाद नाकाम होकर अपने कमरे में चला गया था, क्योंकि वो इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकता था। इसीलिए वो सो गया था, और अमन तो सोया ही हुआ था। तारा के पास अच्छा मौका था। तारा धीरे से अमन के बंगले की छत पर चली गई। वहां जाकर खूबसूरत आसमान को करीब से देखकर वो उतावली हो गई। उसका दिल आसमान की सैर करने को कर रहा था। वो थोड़ा आराम करना चाहती थी। इतने दिनों से जब से वो इस पृथ्वी पर आई थी, उसने न आसमान की सैर की थी, न अपनी शक्तियों का प्रयोग किया था। उसका दिल कर रहा था कि काश वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पाती, घूम पाती, फिर पाती, अपनी मर्जी से किसी की मदद कर पाती। तारा का स्वभाव ही मददगार था। वो हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन वो अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल तभी कर सकती थी जब कोई बहुत ज्यादा मजबूरी में होता, जो कि उसने किया भी था, धारा की मदद करके या मल्लिका की मदद करके। लेकिन आज उसके बच्चे के पेट में आने के बाद उसे अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने लिए करने की इजाज़त मिल चुकी थी। इसीलिए आज उसका दिल खूबसूरत आसमान की सैर करने को कर रहा था। फिर उसने देर न करते हुए पूरे महल को अपनी जादुई शक्तियों के घेरे से ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब था कि अब अमन, विक्रांत और महल में जितने भी लोग थे, वे सुबह से पहले नहीं उठ पाएंगे। वे सभी गहरी नींद सो चुके थे, क्योंकि तारा ने अपना सुरक्षा चक्र फैला दिया था। तारा ने अपनी आंखें बंद करके कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। उसके पढ़ते पढ़ते अचानक तारा के कपड़े बदल गए। तारा ने एक बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद रंग का फ्रॉक पहन लिया था, जिसमें हल्की सोने चांदी की तारों की चमक थी। ये सफ़ेद कपड़े सोने चांदी की चमक वाले परीलोक के कपड़े थे, जो उसके जादुई मंत्र पढ़ने के साथ ही उसके शरीर पर आ गए थे। और शीघ्र ही तारा के हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत हीरे मोतियों से जड़ी हुई छड़ी आ गई, और उसके पीछे उसके सफ़ेद तितलियों के पंख आ गए। तारा एकदम से परीलोक में आ गई थी, और उसके माथे पर एक रानी परी की युवरानी होने का ताज था, जो इतना खूबसूरत था कि उसकी रोशनी पूरे बंगले, पूरी छत पर फैल रही थी, मानो रात में ही दिन निकल आया हो। सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था, और चांद की खूबसूरती उसे और भी बढ़ा रही थी। अब तारा का इंतजार नहीं हो रहा था। उसने प्यार से अपने पेट पर हाथ फेरा और कहा, मुझे पता है तुम सब कुछ देख रहे हो, लेकिन आज तुम्हारी माँ का दिल कुछ अलग करने को कर रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें भी इसमें बहुत मजा आएगा। ऐसा कहकर तारा मुस्कुराने लगी और उड़ान भरनी शुरू कर दी। तारा ने आसमानों के बीच, बादलों के बीच चांद के करीब पहुंचने की कोशिश की। वो घंटों तक आसमान की सैर करती रही। ऊपर से दुनिया उसे कीड़े मकोड़ों की तरह बहुत छोटी दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसकी उड़ान बहुत ऊंची थी। वो बहुत खुशी खुशी पूरे आसमान में तैर रही थी, जैसे कोई पानी में तैर रहा हो। ठंडी ठंडी हवाएं उसके शरीर को छू रही थी। उसे सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो आज रात ऐसे ही पूरी रात सैर करती रहेगी। फिर क्योंकि रात का समय था और पूरी दुनिया सोई हुई थी, वो हल्का सा नीचे होकर टहलने लगी। जैसे ही वो जंगल के ऊपर से उड़ती हुई गई, अचानक उसकी नज़र एक ऐसे चेहरे पर रुकी, जिसे देखकर तारा हैरानी से बुरा हाल हो गया।